ओम शांति। तो ये प्रश्नोत्तर सीरीज चल रही है, ये 13 जनवरी 1978 का 78 की मुरली का प्रश्न है, बाप के समीप रत्नों की निशानी कौन सी है। तो बाबा के शब्दों में उत्तर है, बाप के समीप रहने वालों के ऊपर बाप के सत्य के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत्य के संग का रंग है रूहानियत। तो समीप रतन सदा रूहानी स्थिति में स्थित होंगे, शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित रहेंगे। शरीर को देखते हुए भी ना देखें, और आत्मा जो ना दिखाई देने वाली चीज है वह प्रत्यक्ष दिखाई दे, यही कमाल है। रूहानी मस्ती में रहने वाले ही बाप को साथी बना सकते, क्योंकि बाप रूह है। तो जो रूहानी मस्ती में स्थित रहेंगे वो ही बाप को साथी बना सकते हैं, क्योंकि बाप रूह है। तो यह है समीप रत्नों की निशानियां। इसके अलावा और भी हम चिंतन करेंगे, तो एक बार इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। जो बाप के समीप रहने वालों के ऊपर बाप के सत्य के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा। सत्य के संग का रंग है रूहानियत। तो समीप रतन सदा रूहानी स्थिति में स्थित होंगे, शरीर में रहते हुए न्यारे रूहानियत में स्थित रहेंगे। शरीर को देखते हुए भी ना देखें, और आत्मा जो ना दिखाई देने वाली चीज है वे प्रत्यक्ष दिखाई दे, यही कमाल है। रूहानी मस्ती में रहने वाले ही बाप को साथी बना सकते हैं, क्योंकि बाप रूह है। तो इसमें हम देखेंगे जो समीप रत्न है उनकी क्या क्या निशानियां हैं, उनको क्यों बाप के सत्य के संग का रंग चढ़ा हुआ होगा, कैसे चढ़ेगा रंग वो है जी, संग के रंग से रंग लगेगा। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उनको रंग भी कैसे लगेगा, झाड़ के नीचे बैठ के, वो जो बताया था ना जो गिरगिट है, तो जो झाड़ के नीचे बैठेगा उसको ही पता चलेगा कि वो गिरगिट कैसे रंग बदलता है, वो कौन से कलर का है। तो सभी राइट ही होंगे प्रश्न उत्तर उसके, लेकिन उसके नीचे बैठे रहना पड़ेगा। अर्थात किसी के संग का रंग हमको तब चढ़ता है जब हम किसी के साथ में रहते हैं, लंबे समय से उसके साथ दोस्ती करते हैं, उससे बातचीत करते हैं, समय देते हैं, उनकी बात को सुनते हैं, समाधान करते हैं, या उनका कुछ कहना मानते हैं, अधिक से अधिक दोस्ती करते हैं, तो हमारा ना चाहते भी उनका ध्यान उसके प्रति ध्यान चला जाता है। ज्यादा से ज्यादा उन्हीं के बारे में जानते रहेंगे तो हमारा ध्यान चला जाता है, और नेचुरली संग का रंग चढ़ जाता है, चलते फिरते उसी की बात करेंगे। जैसे अगर हमको किसी के साथ गहरी मित्रता है, दोस्ती है, बहुत लगाव है, अटैचमेंट है, तो अगर हमें उसके बारे में कोई कहता है तो वो हमको अच्छा नहीं लगेगा, उसी के बारे में चिंतन है, और हम उसके ऊपर थोड़ा प्रतिक्रिया भी देंगे उसको, जो जिसके साथ हमारी दोस्ती है उसको अच्छा बताने की, नहीं आप जो कह रहे हो वो ठीक नहीं है, ये अच्छा है, क्योंकि हम साथ में रहे हुए हैं, है ना। जैसे बताया ना गिरगिट तो उसी रंग का है, लेकिन जिस जो नीचे रहता है उसको पता वो कैसा है, वो जस्टिफाई करते हैं। तो लंबे समय से अगर हम उसके संग के रंग में, संग का रंग हमको तभी चढ़ेगा जब हम लंबे समय से उसके साथ मिलेंगे। अर्थात जो समीप रत्न होंगे उनकी पहली निशानी एक तो यह है कि वो बाप ही उनका संसार है, हमेशा उनके साथ संबंध एक बाप से जुटे हुए होंगे। ऐसे संसार में क्या है, रिश्ते नाते हैं, वस्तु व्यक्ति वैभव, तो बाप को ही अपना संसार बना के रखेंगे तो सारा दिन उसी का चिंतन चलता रहेगा। जैसे हर व्यक्ति का घर परिवार भी एक संसार होता है, एक अंदर के हमारे कई संसार बसे हुए हैं, तो हमारे मन में अगर बाप ही संसार है, अर्थात उनसे हमें क्या क्या प्राप्तियां हुई हैं, कैसे उनको बाबा ने हमको ज्ञान दिया, कैसे हमारी सुरक्षा की है, अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई हैं, उन परिस्थितियों में हमारी वो छतर छाया बन के हमारी हिफाजत करता रहा, सुरक्षा करता रहा। तो बाप को अगर हम अपना संसार बना के रखेंगे तो वो भी एक समीप रत्न की निशानी है। दूसरा है जो बाप को साथी बनाने के बाद उनकी फिर अनुभूतियां बढ़ती जाएंगी दिन प्रतिदिन, क्योंकि जो उसमें गुण है वो हमारे में स्वतः आते रहेंगे। तो उनकी दिन प्रतिदिन जो आकर्षण संसार की तरफ है वो धीरे धीरे खत्म होती जाएगी, स्वतः खत्म होती जाएगी। आकर्षण संसार के प्रति पैदा होगी उनको भी, लेकिन वो दूसरे प्रकार की होगी, वो कल्याणकारी आकर्षण होगी जिससे हम उसका रास्ता ढूंढेंगे। ऐसा नहीं कि संसार की तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा, ध्यान तो जाएगा, लेकिन हम युक्तियां रचेंगे उनके कल्याणार्थ। क्यों? क्योंकि हमने कनेक्शन अपना विश्व कल्याणकारी बाप के साथ जुड़ा है, तो जो उसके संग उसका जो रंग है, उसके जो गुण है, वो हमारे में आत्मसात होने लगेंगे और धीरे धीरे उसी के अनुरूप हमारी भी एक्टिविटी चलन उसी प्रकार से चलती रहेगी। तो बाप को संसार बनाने के बाद अनेक प्रकार के आकर्षणों से मुक्त होने की हमारी जो दिन प्रतिदिन जो है मानसिकता बढ़ती जाएगी और स्वतः संसार से वैराग्य आता जाएगा, क्योंकि वो भी इस दुनिया से न्यारा है एकदम, तो सभी का प्यारा है। तो हमारे धीरे धीरे न्यारा होने की स्टेज भी, जैसे बताया ना, वो न्यारे रहेंगे, रूहानियत में रहेंगे, न्यारे रहेंगे। तो शरीर में रहते भी अशरीरी, क्यों? क्योंकि वो भी अशरीरी है। तो जो जैसा हमारा दोस्त है, जैसा हमारा जिसके साथ हमने रिलेशन जोड़ के रखे हैं, जो जैसा है वैसे भी हमारे में वो गुण आते रहेंगे। तो चलते फिरते उठते बैठते भी हमारी जो ये बाबा कहते हैं अशरीरी पन्ने का अनुभव करो, एक सेकंड में परम धाम में, एक मिनट के लिए या जितना समय के लिए, जब चाहे जहां चाहे जितना समय चाहे, वो हमारी दिन प्रतिदिन एकाग्रता बढ़ती जाएगी। और जितना एकाग्रता हमारी बढ़ेगी तो हमारे जो मन बुद्धि संस्कार हैं, चाहे स्थूल कर्म इंद्रियां चाहे सूक्ष्म कर्म इंद्रियां, उनके ऊपर हमारा पूरा अधिकार होगा, आधिपत्य होगा। तो दिन प्रतिदिन हमारी ये प्रगति, ये निशानियां बढ़ती जाएंगी। तो पहला बाप ही संसार है, उस संसार में हम सब प्रकार की अनुभूतियां करेंगे। बाप ही संसार है तो हमारा जो लौकिक रिश्तेदार है उनके तरफ हमारा ध्यान नहीं जाएगा। कौन सा ध्यान नहीं जाएगा? जिस ध्यान से हमारी मानसिक स्थिति गिर जाए। ध्यान तो जाएगा वैसे, ऐसी बात नहीं, अगर कोई याद लगाए ध्यान तो जाएगा, लेकिन हमारी स्थिति नहीं गिरेगी उसमें। हम अपनी स्थिति को स्टेबल बना के रखेंगे, क्योंकि हमको पता है हिसाब किताब है। जैसे बताया ना, समीप रत्नों की भी एक निशानी है कि वो हिसाब किताब को भी अपनी प्रगति का साधन समझेंगे, क्योंकि ज्ञान है, क्लियर है, स्पष्ट बताया हुआ है। तो हिसाब किताब भी कर्म भोग को भी कर्म योग में परिवर्तन करेंगे, क्योंकि उनमें सामर्थ्य आ गया, शक्तिशाली स्थिति बन गई है, क्योंकि सर्वशक्तिवान के साथ कनेक्शन है। तो नेचुरली वो उसका उसकी शक्तियां दिन प्रतिदिन हमारे में इजाफा होती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी, वृद्धि करती रहेंगी। तो इस तरह से बाप ही संसार है। दूसरा, आकर्षण से मुक्त रहेंगे, किसी प्रकार का संसार का वो आकर्षण आकर्षित नहीं करेगा जिसके कारण हमारी स्थिति मनो स्थिति जो वो नीचे गिरे। और तीसरा, प्योरिटी उनकी बहुत हाई लेवल की होगी, क्योंकि वो पवित्रता का सागर है। तो दिन प्रतिदिन हमारी जो पवित्रता है वो बढ़ती जाएगी, उसका ग्राफ दिन प्रतिदिन ऊपर जाता जाएगा, और पवित्रता के कारण फिर रूहानियत बढ़ती जाएगी। जितनी प्योरिटी है तो दूसरे भी हमारी तरफ जो आकर्षित होंगे तो रूहानियत के नाते आकर्षित होंगे। जितना उसकी जो स्मृति रहेगी रूह की, जैसे बाबा ने कहा ना, बाप है रूह, इसलिए रूहानी आकर्षण रहेगी। तो प्योरिटी दिन प्रतिदिन हमारी बढ़ती जाएगी और हमें सहज लगेगा, मुश्किल नहीं लगेगा, हम लड़खड़ाएंगे नहीं, धीरे धीरे वो हमारी अवस्था मजबूत होती जाएगी। और फिर है साक्षी दृष्टा, क्योंकि बाप बाबा हमेशा साक्षी रहते हैं। हमारी साक्षी अवस्था जब गिरती है, जब हम किसी के प्रभाव में आ जाते हैं और हम अपनी स्टेज से नीचे उतर आते हैं, अपनी सीट से नीचे उतर आते हैं। साक्षी अवस्था, जैसे फिल्म हम देखते हैं या कोई भी चीज देखते हैं तो उसको हम साक्षी होकर देखते हैं, उसको हमको पता है भाई फिल्म चल रही है, सबका अपना अपना पार्ट है, उसमें कोई हमें रंज होने की जरूरत नहीं है, हमारी कोई अंदर से ऐसी हलचल नहीं होती ये ऐसा क्यों कर रहा है, ऐसा वैसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको समझ मिल गई है कि हर एक आत्मा का अपना अपना पार्ट है। ऊपर पीट हो रहा है, ये ड्रामा कल्याणकारी है, जो हो रहा है वही सत्य है, वही होना चाहिए, इसमें सभी संपूर्ण निर्दोष हैं, किसी का कोई दोष नहीं है, जो उसको पसंद है वही हो रहा है। तो ये साक्षी दृष्टा स्थिति भी हमारी दिन प्रतिदिन मजबूत होती रहेगी, क्योंकि वो ऊपर से सब देख रहा है। जैसे बाप है तो बाप को पता है ना अपने बच्चों को क्या क्या चाहिए, तो वो दुखी नहीं हो रहे, क्योंकि उसको पता है इनका भविष्य श्रेष्ठ है ना। जैसे माँ बाप है वो भी बच्चों के तो कल्याण का ही सोचेंगे ना, हित का ही सोचेंगे ना, उसी तरह से बाबा भी हमारा कल्याणकारी है, वो हमेशा साक्षी दृष्टा स्थिति में है। उस स्थिति में स्थित रहने के लिए भी हमें ये मदद करती जाएगी जो पहले बारी बातें बताई, कि बाप ही संसार है, आकर्षण से मुक्त रहेंगे और पवित्रता दिन प्रतिदिन बढ़ती जाएगी, तो हमारी साक्षी दृष्टा स्थिति भी बढ़ती जाएगी। और पांचवी बात, दिन प्रतिदिन अवस्था अचल अडोल होती जाएगी, एक रस होती जाएगी, एकाग्रता बढ़ती जाएगी, है ना, दिन प्रतिदिन जैसे बाबा ने बताया ना एकाग्रता, एक मिनट में परम धाम में अपने मन को एकाग्र कर लो, तो वो हमारी दिन प्रतिदिन वो समय का लेवल है, धीरे धीरे वृद्धि को पाता रहेगा। और चौथा है, पांच छठा है, वो हमेशा मालिक बनकर रहेंगे, स्वयं के ऊपर पूरा आधिपत्य उनका ऊपर का पूरा अधिकार होगा, किसी प्रकार की आकर्षण में नहीं आएंगे। और जो संकल्प जिस पर हम चिंतन करेंगे या जिस संकल्प के हम सिद्धि स्वरूप, जैसे बाबा ने बताया था ना, विधि का समय कम होगा लेकिन सिद्धि ज्यादा मिलेगी, तो धीरे धीरे उनका जो है अपने मन के ऊपर पूरा अधिकार होगा, पूरी शक्ति होगी कंट्रोल करने की, और उसके कारण हलचल में नहीं आएंगे वो, तो ये एक मालिकपन की अवस्था आएगी। और साक्षी के साथ साथ और बहुत सारी चीजें, साक्षी बनने के लिए भी बहुत सारी बातें भी चाहिए साथ में, उसमें बहुत सारी शक्तियां चाहिए, तो साक्षी के साथ साथ सहन शक्ति बहुत होगी उनमें, कर्म भोग में भी सहन शक्ति चाहिए ना, तो कर्मयोग कर्म भोग को वो कर्मयोग में तभी परिवर्तन कर सकेंगे जब हमारी सहन शक्ति भी पूरा अपनी बुलंदी पर होगी, एकदम हाईएस्ट चरम अवस्था पर होगी। जैसे यज्ञ की शुरुआत में, यज्ञ की स्थापना के समय में कितना सहन करना पड़ा सभी को, लेकिन कभी कोई भी हलचल में नहीं आए, सभी अचल अडोल रहे, तो दिन क्योंकि परिस्थितियां तो आएंगी, ऐसा नहीं है कि परिस्थितियां हमेशा हमारी से दूर रहेंगी, बाबा ने कहा माया की जीत होगी ना, ऐसा नहीं कि तुम बच्चे जीत जाएंगे, तो परिस्थितियां आएंगी, लेकिन उन परिस्थितियों में भी हमारी जो सहन शक्ति है या समाने की शक्ति है, किसी भी बात को समाएंगे, जैसे बाप समीप अर्थात बाप हर घर की हर बच्चे की बात को समाता है, बाहर नहीं फैलाता है, कोई भी माँ बाप अपने बच्चों की कभी ऐसी बाहर ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देगा कि मेरे बच्चे ऐसे हैं वो खराब हैं या खराब काम करते हैं उनमें अच्छे गुण नहीं है, ऐसा कोई बाप थोड़ा कहेगा, तो बाप तो हमेशा अच्छे उनके गुणगान करेगा ना, तो ये समीप रत्नों की निशानी होगी कि समाने की शक्ति उनके अंदर होगी, क्योंकि घर के अंदर भी कहना खतरनाक है, लेकिन सावचेत कर सकते हैं, कोई अगर फैमिली में भी अगर कोई गलत काम करता है तो उसको सुधारने का सभी प्रयास करते हैं, जैसे मान लो बड़ा बेटा है और बाप है तो आपस में वो डिस्कस करेंगे कि छोटे को कैसे समझाया जाए, तो दो उस तरीके से हमारी वो मनोस्थिति ऐसी होगी कि उसको सुधारने के लिए हम चिंतन कर रहे हैं, तो उसी तरह से बातें तो आएंगी, लेकिन उन बातों को फैलाने की बजाय उनको हम समाएंगे और उनका समाधान ढूंढेंगे, तो वो समस्याओं का समाधान ढूंढने के लिए अपना चिंतन करेंगे, समस्या को फैलाने के लिए नहीं, और फिर वातावरण भी उसी अनुकूल बनेगा, शक्तिशाली बनेगा, तो समाने की शक्ति बहुत जरूरी है, कौन सी बात को समाना है और कौन सी बात को नहीं समाना है, ऐसा नहीं मुरली वो पढ़ ली और समा ली, वो समानी तो है लेकिन समाने के साथ साथ उसको फैलाव भी करना, उसका चिंतन भी करना, उसको बढ़ाना भी दिन प्रतिदिन, तो इस तरह से उनके अंदर समाने की भी शक्ति होगी, किसके अंदर होगी समाने की शक्ति, किसकी निशानियां चल रही, जो बाप के समान समीप रतन होंगे, ये हैं समीप वाले, दूसरे होते समान वाले, वो उनसे थोड़ा और आगे होंगे, समीप वाले वाले जो बाजू में बैठे हुए हैं और समान है, बिल्कुल समान एकदम, जो वो है वो वैसा मैं, तो वो उनकी थोड़े और ऊपर की स्टेज होगी, तो ये समीप रतनों की निशानियां चल रही है, जिनमें हर बात को समाने की शक्ति होगी और हर समस्या के समाधान करने का वो सामर्थ्य रखते हैं। दूसरा, वो सदा एकमत होकर चलेंगे, वातावरण में डिस्टर्बेंस तब आती है जब हम एकमत नहीं होते हैं, सबकी विचारधारा तो अपनी अपनी है लेकिन सबको एक साथ लेकर चलना, जैसे हम दादियों को देखते हैं इतना लंबा सफर किया जो 82 ईयर हो गए, तो एकमत होने के कारण ही इतना लंबा सफर वो तय कर पाए हैं, उनको इतने लंबे सफर में उन्होंने कितनी आत्माओं को भगवान के साथ जोड़ दिया, पूरे वर्ल्ड में ब्रह्मा कुमारीज का बाबा का नाम रोशन कर दिया, कोई छोटी बात थोड़ा नहीं है, जिनके अंदर वो उतनी संसारिक नॉलेज भी नहीं है और संसार को सारा अपने कब्जे में कर लिया, तो वो कितनी एकमत थी, एकजुट होकर एक दो के विचारों को उन्होंने अपना सम्मान देकर आगे बढ़ाया, तो एकमत होकर दूसरों को एम्पावर करने का सामर्थ्य रखते हैं, ऐसा नहीं कि मैं ही आगे बढ़ रहा हूं या मैं ही आगे बढ़ रही हूं, नहीं, परिवार को अगर हम अपना समझते हैं तो हर परिवार के मेंबर को आगे बढ़ने की मानसिकता हमारे में होती जाएगी, जो बाप के समान समीप रत्न है, तो ये भी एक बात है कि वो एटमॉस्फेयर को शक्तिशाली बनाएंगे और एम्पावर करते जाएंगे सबको, एकमत हो करेंगे और मन के मालिक होकर रहेंगे, अर्थात जितना मन के मालिक है तो माया जीत भी है, हमेशा वो इकोनॉमी से रहते हैं, कौन समीप रत्न, जो बाप के समीप रत्न है वो हमेशा इकोनॉमी में रहेंगे। सम्मान वाला थोड़ा और आगे होगा, उसके बारे में और बाद में चिंतन करेंगे, क्योंकि पहले वो सम्मान वाला ऊपर का चिंतन है ना, पहले नीचे वाली सीढ़ी ठीक है, इसका डबल कर दो फिर वो सम्मान वाला आ जाएगा, इकोनॉमी से रहेंगे। यज्ञ का हर कणा दाना देखो कितना कीमती है, तो हम दादियों को देखते हैं जितना वो त्याग तपस्या है। आज भी अगर दादियों के आसपास जो संसाधन है वो वास्तव में दादियों के मन की उपज नहीं है, वो दादियों को उनकी जरूरत नहीं है, वो तो ठीक है आसपास वाले उनकी केयर करने के लिए उनका उपयोग कर रहे हैं, लेकिन दादियों तो हमने हमेशा देखा बड़े दादी जी थे उस समय तो यज्ञ में इतने संसाधन नहीं थे। 99 तक हमने देखा वो एक ही गाड़ी चलती थी और दूसरे बहुत कम साधन थे। तो उसी तरह से यज्ञ को इकोनॉमी करके चलाना और उसकी व्यवस्थाओं को सही तरीके से संचालित करना इकोनॉमी के बिना नहीं हो सकता। वो दूसरा क्या कर रहा है उसको हमको देखने के बजाय हमको स्वयं हम क्या कर रहे हैं, स्वयं यज्ञ के लिए इकोनॉमी कितना करें, एक तो स्थूल रूप से इकोनॉमी, दूसरा सूक्ष्म रूप से अर्थात संकल्पों की भी बचत कितना करें, क्योंकि संकल्प बहुत अमूल्य शक्ति है एक, और उस अमूल्य शक्ति को हम परचिंतन में गवा रहे हैं, व्यर्थ की गप्पों में लगा रहे हैं, गसिपिंग मार रहे हैं। तो इस तरीके से जो संकल्प शक्ति है जो हमको भगवान ने दी है इस केवल संगम ऊपर, आगे संकल्प तो होगा लेकिन उस शक्ति की वैल्यू का हमको केवल अभी संगम पर ही पता है, तो उनको उन खजानों को हम ऐसे वेस्ट नहीं करेंगे, इकोनॉमी से चलेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं तो इन चीजों का भी हमको अगर इस पर ध्यान रखेंगे इकोनॉमी रहेंगे, और इकोनॉमी के लिए फिर इच्छा मात्रम अविद्या की, अनावश्यक इच्छाएं हैं जो हमारे जो खजानों को बिना अर्थ के वेस्ट कर देती हैं, उन अनावश्यक इच्छाओं के प्रति हमारा लगाव है, कोई चीजों की संग्रह करने की वृत्ति है, जिन चीजों के बिना हम चल सकते हैं, जो चीजें हमने लेकर रखी हैं लेकिन यूज ही नहीं कर रहे हैं वो सब अनावश्यक ही है। सारे दिन में अगर देखा जाए या अपनी लाइफ में देखा जाएगा तो बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जिनका हम यूज ही नहीं कर रहे हैं, ऐसी पड़ी है वो और अंत तक ऐसी रहती हैं वो, तो उन चीजों को भी हम इकोनॉमी से सफल कर सकते हैं। और साथ में वो प्लानिंग बुद्धि होंगे, कौन होंगे प्लानिंग बुद्धि, आसमी प्रतन, तो प्लानिंग बुद्धि होंगे, प्लानिंग बनाएंगे, जिस प्लानिंग को वो प्रैक्टिकल में लाने की भी शक्ति रखते हैं और सबको उस प्लानिंग में इन्वॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं हम खुद प्लानिंग तो बनाते हैं, उस प्लानिंग में चार चांद लगाने के लिए सबके विचार जब हमारे पास आते हैं तो कुछ ना कुछ ऐसे विचार आते हैं जिन विचारों से, जिन प्लानिंग से, जिस प्लानिंग से सेवा दिन प्रतिदिन गतिमान होती रहती है, तो आगे बढ़ती रहती है। तो प्लानिंग बुद्धि होंगे और वो हमेशा ट्रस्टी होकर रहते हैं, उनमें किसी प्रकार की आसक्ति नहीं है, अनासक्त भाव से है, जो दिया हुआ उसका दिया हुआ उसको हम संभाल के रख रहे हैं, उसी के अनुसार हम अपनी मर्यादाओं में ईश्वरीय मर्यादाओं के पथ पर चल रहे हैं, उनको ईश्वरीय मर्यादाओं को अपने जीवन का एक विशेष हिस्सा बना लिया है, विशेष क्या बल्कि संपूर्ण हिस्सा बना लिया, जिन मर्यादाओं के कारण हम दिन प्रतिदिन हर बात में ट्रस्टी होकर चलते हैं, चाहे वो देह के ट्रस्टी हैं, चाहे वो स्थूल चीजों के ट्रस्टी हैं या यज्ञ की हर वस्तु के ट्रस्टी हैं, तो इस तरह से वो ट्रस्टी होकर चलेंगे। और साथ में अनुभव की अथॉरिटी होंगे वो, क्योंकि लंबे समय का जो पुरुषार्थ है, लंबे समय से अनेक प्रकार की जो समस्याएं आई हैं, जिन समस्याओं को उन्होंने पार किया है, परिवार में अनेक प्रकार की परिस्थितियां आई हैं, उन परिस्थितियों को उन्होंने सहज रूप से पार किया है, तो वो सारे एक अनुभव के खजाने उनके पास में है, तो वो अनुभव की अथॉरिटी से भी कभी लड़खड़ाएंगे नहीं, हर समस्या को सहज रूप से पार कर चल देंगे, उसमें घबराएंगे नहीं, ये क्या हो रहा है, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये वैसा क्यों कर रहा है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए, ये तो लंबे समय से ज्ञान में चल रहा है, तो ये सारी चीजें उन्होंने क्रॉस कर ली हैं, क्योंकि उनको पता है कि हर आत्मा अपने अपने शक्ति के अनुसार पुरुषार्थ कर रही है, किसी को हम जबरदस्ती पुरुषार्थ नहीं करा सकते। तो अनुभव की अथॉरिटी होने के कारण वो हर परिस्थिति को सहज रूप से पार करेंगे, और वो अनुभव की अथॉरिटी भी दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनेगी। जितना हम अनुभव की अथॉरिटी से कार्य करते हैं, उसकी अनुभूति में रहते हैं, तो हमारा एक जीवन स्वयं का भी सहज रहेगा और दूसरे के जीवन को भी हम सहज रूप से आगे चला सकते हैं, और वो संपूर्ण नष्टो मोह होंगे, कौन समय प्रतन, संपूर्ण नष्ट मोह, उनका मोह नहीं होगा किसी में, अगर मोह है तो सार्वजनिक होगा सभी से मोह, अगर नहीं है तो किसी से भी नहीं है, है तो है नहीं है तो नहीं है, सीधी सी बात है, आए तो अकेले हैं, सीधी सी बात है, वो सोचने का विषय है, हम आए अकेले, जाना भी अकेले ही है, ये तो टेम्परेरी रास्ते में रुक गए हैं, थोड़ा समय स्टेशन पर रुके हैं, यहाँ गाड़ी रुकी हुई है, वो छोड़ के चले जाना है। ना कहते हैं जियो तो ऐसे जियो जैसे सभी अपने हैं, और जियो तो ऐसे जियो जैसे अपना कोई नहीं है, कोई मिले तो भी ठीक है, नहीं मिले तो भी ठीक है। तो संपूर्ण नष्ट मोह होंगे। तो ये सब्जेक्ट तो बड़े गहरे है, नष्ट मोह कहना तो आसान है, लेकिन उस मोह को नष्ट करना है, और वो एक ही प्रयास है, वो जो बाबा इसमें जिक्र कर रहे हैं कि अशरीरी अवस्था, देह में रहते जो हमको दिखाई नहीं दे रही है वो हमको प्रत्यक्ष दिखाई दे। कैसे प्रत्यक्ष दिखाई दे? जैसे माता जी ने बिंदी लगाई है वो प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है, ऐसे वो बाहर आत्मा दिखाई दे। और इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी लंबे समय से, क्योंकि देह तो दिखाई दे रही है और ये सूक्ष्म प्रैक्टिस है। चलते फिरते जैसे हम कहीं भी जाते हैं, रास्ते में जा रहे, तो एक बहुत अच्छी अवस्था का अभ्यास, जो बहुत अच्छी अनुभूति होती है, साक्षी अवस्था, साक्षी होकर देख रहे हैं कि आत्माएं चल रही है, बिंदियों का संसार है, बिंदियों का झाड़ है, ये बिंदियां ऊपर से अवतरित हुई हैं और ये थोड़े समय के लिए पार्ट प्ले करने के लिए आई हैं, पार्ट प्ले कर रही हैं। हर आत्मा अपने अपने पार्ट प्ले करते हुए इस सृष्टि रंगमंच के ऊपर थोड़े समय के लिए आई है, और सबको वापस लौटने का टाइम है। जो कल था ना मुरली में कि बाप है निराकार, और तुम बच्चे भी उसके जैसा बनते हो अभी, अब तुमको ही वापस लौटना है अपने घर। तो ये कितने सुंदर सुंदर महावाक्य आते हैं जो हमारे पुरुषार्थ की गति को बढ़ाते हैं दिन प्रतिदिन। तो वो संपूर्ण नष्ट होगा कौन? समय प्रतन। तो कितनी निशानियां बताई? 10। कौन कौन सी? थी तो ज्यादा है, ज्यादा 10 नहीं है। कौन कौन सी बताई? सबसे पहली बापी संसार है। तो संसार यहां हमको अपने चिंतन को बढ़ाने के लिए, प्रखर करने के लिए उस संसार के बारे में सोचना है, और फिर उस संसार को इस संसार से हमको भेंट करना है। उस संसार में क्या होता है, यहां क्या होता है, उसमें रिश्ते नाते होते हैं, संबंध संपर्क होता है, बिजनेस होता है, यहां हम कौन सा बिजनेस कर रहे हैं, वहां कौन सा बिजनेस होता है, वहां कौन से रिश्ते नाते हैं, कौन से रिश्ते नाते हैं। तो ऐसे हम कंपैरिजन करेंगे तो भी हमारी बुद्धि जो है बाबा की तरफ जुड़ती रहेगी, क्योंकि बाबा ने कहा हर बात को, हर लौकिक बात में अलौकिकता जोड़नी है, उसको परिवर्तन करना है। जैसे 70 की मुरली है ना, कि हम स्नान कर रहे हैं तो किसका स्नान कर रहे हैं, खा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं, तो उसको हम उस संसार में और इस संसार में हम तुलना करेंगे धीरे धीरे, तो हमारी बुद्धि स्वतः उस संसार से विरक्त होती जाएगी, अनासक्त होती जाएगी, इस अलौकिक संसार से, पारलौकिक संसार से हमारी आसक्ति बढ़ती जाएगी। तो पहली निशानी थी बाप ही संसार है, और दूसरी निशानी सभी अनुभूतियों से, अनुभूतियों में दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, और तीसरी निशानी आकर्षण मुक्त होंगे, आकर्षण मूर्त भी होंगे, आकर्षण मुक्त भी होंगे, रूहानी आकर्षण से वो रूहानी आकर्षण के मूर्त होंगे और संसार की आकर्षणों से मुक्त होंगे। उन्हें कोई भी प्रकार का बंधन बांधेगा नहीं है, क्योंकि वो निर्बंधन है, उन्होंने अपना नाता अपने निर्बंधन बाप से जोड़ा है। किनों ने? समीप्रतनों ने निर्बंधन बाप से नाता जोड़ा है, तो वो स्वतः निर्बंधन होते जाएंगे, अशरीरी अवस्था का अनुभव करते जाएंगे। तो तीसरी निशानी सी आकर्षण मुक्त होंगे, और चौथी निशानी साक्षी, साक्षी अवस्था में रहेंगे हमेशा, वो साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट रहेंगे, और साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहने से उसके लिए क्या क्या चाहिए? एक से बताया सहन शक्ति, क्योंकि साक्षी होकर देखना आसान बात नहीं है। हमारा कोई आपसवास में लंबे समय से हमने कोई पुरुषार्थ करके कोई चीज बना के रखी और आते किसी ने तोड़ दी तो क्या होगा? उस समय सारा हमारा पुरुषार्थ खंड खंड कर दिया, उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, पीस पीस कर दिए, तो हमारा हृदय विदीर्ण नहीं हो रहा है। तो उसके लिए सहन करने की शक्ति चाहिए और समाने की शक्ति, और तीसरा जो कल बाबा ने परसों वरदान में स्लोगन में वरदान में सुनाया था कि उनके मस्तक पर सदा हर प्रकार की संतुष्टता का बोल लगा रहेगा, हर परिस्थिति में संतुष्टता का बोर्ड रहेगा, अर्थात वो स्मृति में रहेगी कि मैं संतुष्ट मणि हूं। उसके लिए क्या क्या बताया था संतुष्टता के लिए, वो तो हम सबने सुना ही है। और चौथी पांचवी बात, हाँ, प्यूरिटी का लेवल उनका बहुत हाई होगा, ऊंचा होगा, हाई लेवल की प्यूरिटी होगी, प्यूरिटी दिन प्रतिदिन और ही बढ़ती जाएगी उसके समान, क्योंकि पवित्रता के सागर की संतान है। तो वो स्मृति में रहने से हमारे प्यूरिटी में भी दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी, इजाफा होता रहेगा। नेक्स्ट, हाँ, उनकी एकाग्रता, उनके मन बुद्धि के ऊपर पूरा अपना आधिपत्य होगा, मन बुद्धि को कंट्रोल करने का पूरा समर्थ्य होगा, शक्ति होगी, जितना समय चाहे, जहां चाहे, जिस संकल्प में चाहे, अपनी एकाग्रता को, एकाग्रता बरकरार रहेगी, वहां अपनी मन बुद्धि को स्थित रख सकेंगे। कौन? समय प्रथम, क्योंकि पक्का पक्का होना जरूरी चाहिए ना, तभी तो समय में जाएंगे। और नेक्स्ट और कौन सा बताया, वो कैसे चलेंगे आपस में, एक मत होकर चलेंगे, कौन चलेंगे एक मत हो गए, समय प्रथम एक मत हो गए आपस में, उनके विचारों किसी के विचार को काटेंगे नहीं। हमने देखा है सूरज भाई की भी, कईयों की ऐसी विशेषता है, सचिन भाई की भी है, कि किसी के विचार को काटते नहीं है, हालांकि उनको पता वो बात ठीक नहीं है, लेकिन उस विचार को प्राथमिकता देके उसमें उसका समावेश कर देना, तो सामने वाले को भी थोड़ा आथत रहता है, हाँ इस विचार में भी चलो हमारे विचार को प्राथमिकता दिए, और सामने वाले के विचार अगर ठीक नहीं है और हम उसको प्राथमिकता दे रहे हैं और प्राथमिकता के साथ उस विचार को उसमें समायोजित करते हैं, तो सामने वाले को थोड़ा शक्ति मिलती है कि हाँ इसमें थोड़ा थी तो गड़बड़, अब इसको ऐसे सोचना चाहिए, इस तरीके से हम इस विचार को ले सकते हैं। तो एक मत होकर रहेंगे, किसी के विचार को काटेंगे नहीं, कौन समय प्रथम, और आगे वो स्वराज्य अधिकारी अर्थात मन के मालिक होकर रहेंगे, सदा स्वराज्य अधिकारी शक्तिशाली आत्मा इस सीट की स्थिति, सीट पर वो बैठे रहेंगे, इस स्थिति को छोड़ेंगे नहीं, समय प्रथम। और इकोनॉमी हो गई, मना सर्व खजानों की बचत करेंगे, चाहे वो स्थूल है चाहे वो सूक्ष्म है, तो इकोनॉमी से वो उनकी जो जीवन शैली होगी। और नेक्स्ट प्लानिंग बुद्धि, प्लानिंग इंटेलेक्ट, उनकी बुद्धि प्लानिंग विशाल मानसिकता होगी, ऐसा नहीं वो थोड़ा एक दो सेंटर में नहीं फंसेंगे, हाँ भले सेवा तो हम एक दो की जगह ही करते हैं अलग बात है, लेकिन मानसिकता विशाल होगी, ऐसा नहीं है ये ब्राह्मण मेरे पास क्यों आया है या ये मेरे पास क्यों आ रहा है, नहीं बेहद, क्योंकि विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं, तो उनकी सेवा भी कम से कम मनसा सेवा तो विश्व कल्याणकारी होगी, किसी कोई भी किसी भी प्रकार की आत्मा है, कैसे भी संस्कारों वाली आत्मा है, लेकिन सबके प्रति शुभ भावना शुभ कामना की भावना होगी तो ही हम विश्व कल्याण कर सकते हैं, जो संडे की मुरली में था विश्व कल्याणकारी आत्माओं के लक्षण, शुभ भावना शुभ कामना श्रेष्ठ वृत्ति श्रेष्ठ दृष्टि संबंध संपर्क में कैसे रहेंगे, तो वो सब चीजें किसमें होंगी, समय प्रत्न में, और ये प्लानिंग बुद्धि वाले हैं, अनासक्त होंगे और संपूर्ण त्याग वृत्ति भी होगी, त्याग का भी त्याग, जो त्याग किया जीवन में वो त्याग का वर्णन नहीं करेंगे, त्याग को भी भाग्य का वो अनुभव करेंगे कि हमारा परम सौभाग्य है, और वास्तव में वो त्याग तो है ही नहीं है, अच्छा चलो त्याग किया भी है, लेकिन वो त्याग कराने का सामर्थ्य किसने दिया, वो शक्ति किसने दी है, हमारे में तो वो ऐसा दम नहीं था, ऐसी कोई अंदर में इतनी औकात तो थी नहीं, इतनी शक्ति तो थी नहीं कि उसको हम त्याग कर सके, तो दिया किसने, उस संसार को छोड़ना मन से कितनी बड़ी बात हो, कितनी बातों का त्याग किया है, वो संकल्प जिन संकल्पों ने हमारे जीवन को नरक जैसा बना दिया था, उन संकल्पों को त्याग करने की शक्ति किसने दी है, और वो शुद्ध संकल्प परमात्म शक्तियों के संकल्प हमारी बुद्धि में बैठे हैं, तो ये शक्ति किसकी है, उसकी कृपा है, तो वो त्याग अनुभव नहीं करेंगे, उसको उसका भाग्य अनुभव करेंगे, तो त्याग मूर्त भी होंगे, त्याग का भी त्याग करेंगे, लेकिन उसका भाग्य स्मृति में रहेगा, ट्रस्टी होकर रहेंगे, कौन समय प्रतन, तो ट्रस्टी हर बात में ट्रस्टी, चाहे स्थूल चीजों में चाहे सूक्ष्म में, मनोस्थिति उनकी ट्रस्टी वाल होगी, प्रन्यासी की अवस्था होगी, और अनुभव की अथॉरिटी वाले होंगे, और संपूर्ण नष्ट मोहा होंगे। तो ये कुछ की निशानियां थी जो थोड़े समय में हमने चिंतन की, इसके अलावा और भी बहुत हो सकती है, जो आज सारा दिन हम इसको दिन प्रतिदिन बढ़ाएंगे, ताकि समीप के साथ साथ हम समान बन सके, तो इनको डबल करने के बजाय जितना भी जन्म चिंतन कर सकते हैं। तो ये बाबा के प्रश्न जो था कि समीप रत्नों की निशानी कौन सी है, तो बाबा कह रहे हैं बाप के समीप रहने वाले जो हैं उनको बाप के जो बाप सत है उसके संग का रंग चढ़ा हुआ होगा, अर्थात रूहानियत में रहेंगे, क्योंकि बाप रूह है, सदा रूहानी स्थिति में स्थित रहेंगे और शरीर में रहते हुए रूहानियत में रहेंगे, शरीर को देखते हुए न देखें, और आत्मा जो न दिखाई देने वाली चीज है वह प्रत्यक्ष दिखाई दे, यही कमाल है। तो कितनी बड़ी प्रैक्टिस है कि आत्मा जो दिखाई नहीं दे रही है उसको देखने की प्रैक्टिस, तो लंबे समय का अभ्यास करने के बाद ही हम इस चीज को अनुभव कर सकते हैं, और अब ये सहज नहीं होता है आत्मा दिखाई लंबे समय से हमको शरीरों को देखने की आदत पड़ी हुई है, तो शरीर का भी चिंतन चल सकता है, लेकिन उस हमको असफलता से घबराना नहीं है, क्योंकि बताया ना कि माया भी जीत तो माया भी पहनेगी कभी ना कभी, लेकिन हम उस असफलता से न घबराते हुए अपने सिद्धांतों से समझौता न करते हुए अपने पुरुषार्थ के मार्ग पर तीव्र गति से बढ़ने की मानसिकता रखकर हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि विजय हमारी हुई पड़ी है, निश्चित है वो तो। बाबा ने कहा ना, सफलता तुम्हारी नहीं हुई तो किसकी होगी। कल्प कल्प के विजय रत्न हो, सर्वशक्तिवान तुम्हारा साथी है, तो शक्ति हम काम करेंगे, लेकिन अगर हम इनको स्मृति में रखेंगे तो। ओम शांति।